जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, सौदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव परमहंस परिव्राज कचारी अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदिष्टवाइन ग्रीस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यलीला प्रवचित पौन फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सखी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरदाय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एन गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 42। मेरे पीछे बोलिए। दोसरे तय कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्पाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। दोषरेत कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता दोषैरेते कुलग्नानां वर्णसंकरकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता शब्दार्थ बोलिए दोष है ऐसे दोषों से एत है इन सब कुलग्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का वर्ण संकर अवांछित संतानों के कार्य क्या है कारणों से उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं जाति धर्मा सामुदायिक योजनाएं कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं च भी शाश्वता सनातन अनुवाद मेरे पीछे बोलिए जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं त्रिगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाए भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाशात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं दो सहरित है कुलखना नाम वर्ण संकर कारक है, जो कुल का नाश करने वाले हैं उन्होंने जब इस प्रकार के दोष उत्पन्न कर दिए, मतलब क्या वर्ण संकर का दोष जो है जब पैदा कर देते हैं वो कुल में इसके पहले अर्जुन ने बताया कि कुल के नाश होने से क्या होता है, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है और अधर्म से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो वर्ण संकर है ये जो इतना बड़ा दोष जो कुल में पैदा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जाति धर्म और कुल धर्म जो शाश्वत हैं वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे नायक अंधे होते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कुल घाती हैं, जो कुल का नाश करते हैं तो उनके द्वारा बहुत भारी दुष्परिणाम प्राप्त होता है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अनुत्तरदायी नायक समाज के अनुत्तरदायी नायक हैं। नायक का मतलब क्या है, जो नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे, है ना। नेतृत्व का मतलब क्या है, नेत्र, जैसे नेत्र है ना, तो ये नेत्र क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, मतलब रास्ता दिखलाते हैं। तो नायक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ लोगों को रास्ता दिखलाए, कैसा रास्ता, सुरक्षित रास्ता जिसमें किसी प्रकार का खतरा ना हो, तो वो नायक कहलाते हैं। लेकिन जो अनुत्तरदायी नायक होते हैं तो वे क्या है, अंधे हैं, अंधा यथा अंधे रूपिणी माना, एक अंधा जो है बहुत से अंधों को रास्ता दिखला रहे हैं, तो क्या हुआ, क्या होगा, एक अंधा व्यक्ति है हजारों अंधों को रास्ता दिखलाता है तो क्या होता है, गड्ढे में वो भी गिरेगा और सब गड्ढे में गिरेंगे, है ना। तो ऐसे जो ना परिणाम होते हैं। तो अर्जुन को यह चिंता है, अर्जुन की जो चिंता है कि ये जो हम युद्ध कर रहे हैं इसका ये दुष्परिणाम होगा। और अर्जुन कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये दुष्परिणाम होगा, हम देख रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे, युद्ध तो इनकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन अपनी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सब उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जुए की शर्त के अनुसार हम हारे हैं तो हमें 12 साल का वनवास करना होगा, 1 साल का अज्ञातवास करना होगा, और 1 साल के अज्ञातवास में अगर नहीं ढूंढे गए, पहचाने गए, तो हमें राज्य वापस दे दिया जाएगा। तो उनकी ही शर्त के अनुसार सब बातें पूरी हुई और वे ही अपनी बात को अब काट रहे हैं, मिटा रहे हैं और क्या कहते हैं कि नहीं, वो जो बात थी वो उस समय के लिए थी, इस समय तो बात यही है कि बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, है ना। तो अर्जुन ने कहा है कि ये लोग जो है ना दोष नहीं देख रहे हैं कि कुल के नाश होने में क्या दोष है, क्यों, लोभोपतजेसा, लोभ से अंधे हैं, लोभ के कारण अंधे हैं, इस कारण से देखते नहीं हैं कि कुल के नाश होने में क्या दोष है, बल्कि इसमें इनके ऊपर तो दो दोष लग रहा है, एक तो मित्र द्रोह है, मित्र के साथ भी द्रोह कर रहे हैं और कुल के नाश, कुल का नाश भी कर रहे हैं, दोनों बातें, क्योंकि हम इनके साथ मित्रता कर रहे हैं, हैं? अर्जुन ने इनके साथ मित्रता की, हैं? जितनी जुए की शर्तें थी उन सबको मान लिया, हैं? जुआ खेलने के लिए बुलाया तो जुआ खेला, कपट पूर्वक जुए में हराया तो हार भी गए पर हार भी स्वीकार कर ली, सब कुछ वे जितना कपट कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करते हुए अब जो है ना, अब तो सीधे सीधे जो है ना, मतलब क्या है, साफ झूठ बोल रहे हैं, झूठा व्यवहार कर रहे हैं, मित्र के साथ द्रोह कर रहे हैं, जितना हम इन पर विश्वास कर रहे हैं उतना अधिक ये हमारे ऊपर विश्वासघात कर रहे हैं, तो मित्र के साथ द्रोह करने में कितना पाप लगता है इसको ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो मित्र के साथ द्रोह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध ही करना चाहते हैं तो हमें युद्ध तो करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई मित्र द्रोह है हमारी ओर से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो शत्रुता ही करते हैं हमारे साथ, हमने हमेशा इनके साथ मित्रता की, इन्होंने हमेशा हमारे साथ शत्रुता की, तो इस लड़ाई में हमारी ओर से तो मित्र द्रोह नहीं हो रहा है, लेकिन ये मित्र द्रोह कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों प्रकार के जो पाप हैं इनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोभ से इनकी आंखें अंधी हैं, बुद्धि ढकी हुई है, लोभो उपाद चेतसा, लेकिन हम क्यों ना देखें, क्योंकि हमारे द्वारा एक तो पाप हो रहा है वो क्या है, कुल का नाश, ये दो प्रकार के पाप कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रकार का तो पाप हम भी कर रहे हैं कि कुल का नाश कर रहे हैं, कुल के नाश में हम भी भाग ले रहे हैं, तो हम क्यों ना देखें इस प्रकार के दोष को। तो फिर अर्जुन जो है देख रहे हैं और वो भगवान को दिखा रहे हैं कि कुल के नाश होने में इस प्रकार के दोष हैं, तो हम फिर क्यों युद्ध करें। तो इस तरह से अर्जुन ने जो है ना बड़े विस्तार से ये सब बातें बताई हैं। अब हम सुनेंगे एक लेख जो हमने लिखा और भगवत दर्शन में छपा था, इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा, भाग 10, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा बोला गया है, यद्यपि इस बात को साक्षात भगवान नहीं बोल रहे हैं फिर भी वे अर्जुन के मुख से हमें ये सामान्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो व्यक्ति अर्जुन की बात को अच्छी प्रकार से समझेगा वही व्यक्ति श्री भगवान की बात को समझ सकता है। कुछ लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय को महत्व नहीं देते हैं, वे सोचते हैं कि इस अध्याय में तो अर्जुन ने अपने अज्ञान की बातें कही हैं, इन बातों से हमें क्या लाभ होगा। वे लोग नहीं जानते कि भगवद गीता का प्रथम अध्याय भी क्या है, योग, इसका नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका अर्थ है अर्जुन की चिंता का योग। योग का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना, अतः अर्जुन विषाद योग का अर्थ हुआ अर्जुन की चिंता के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करना। देखा, चिंता के द्वारा भी आप भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि अर्जुन की चिंता अज्ञान से उत्पन्न हुई है, परंतु फिर भी दिव्य है। अर्जुन की चिंता से हमें ये पता चलता है कि इस अज्ञान के सागर में डूबा हुआ जीव किस प्रकार से भगवान का सहारा लेने की चेष्टा करता है। ये शरीर तथा ये जगत दोनों ही असत, अचित तथा निरानंद कहे गए हैं। असत का अर्थ है मृत्युमय, अचित का अर्थ है अज्ञानमय तथा निरानंद का अर्थ है दुखमय। इसलिए इस संसार को मृत्यु का सागर, अज्ञान का सागर तथा दुख का सागर कहा गया है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही सत, चित और आनंद कहे गए हैं। अर्जुन के मुख से ये बातें कहकर भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी चिंता या समस्या भगवान से बतानी चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन ने जो भी अपनी चिंता प्रकट की है उससे हमें अर्जुन के शुद्ध चरित्र का पता चलता है, जिसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहला, अर्जुन इस जीवन में किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, और दूसरा, अर्जुन इस जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं। इन दो बातों से पता चलता है कि यदि कोई जीव भगवान के निकट आना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति का त्याग तथा पाप कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम अध्याय का अध्ययन करने से हमें पाप कर्मों से भय उत्पन्न होता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य ये बतलाया गया है कि एक वेश्या प्रतिदिन एक तोते के मुख से इस अध्याय को सुना करती थी। यद्यपि वो यह नहीं जानती थी कि तोता क्या पढ़ता है, परंतु वह मनोयोग से उस पाठ को सुना करती थी। इस पाठ को प्रतिदिन सुनने का फल यह हुआ कि वह वेश्या अत्यंत पुण्यात्मा बन गई तथा अपने पुण्य के प्रभाव से उसने एक बैल को कष्ट की अवस्था से मुक्त कर एक सदाचारी ब्राह्मण के रूप में जन्म दिलाया। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन से जब कोई व्यक्ति पापों से नफरत करने लगता है तथा पुण्यात्मा बन जाता है तो वह भगवद गीता में भगवान की बातों को समझ सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों पर सुंदर तात्पर्य लिखा है, जबकि अनेक तथा कथित विद्वानों ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अनावश्यक समझकर कोई तात्पर्य नहीं लिखा। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के समक्ष दो चिंताएं प्रकट कर रहे हैं। प्रथम चिंता है जाति धर्म के नष्ट होने की तथा दूसरी चिंता है कुल धर्म के नष्ट होने की। अर्जुन ने कहा ना, उत्साह जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वता। यद्यपि भगवान का प्राकट्य इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए ही हुआ था, और भगवान किस प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे ये कोई समझ नहीं सकता, परंतु अर्जुन की जो चिंता है वो समान रूप से हम सभी को होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जाति धर्म का अर्थ बताया है सामुदायिक योजना तथा कुल धर्म का अर्थ बताया है पारिवारिक कल्याण कार्य। ये दोनों प्रकार के नियम किसी भी मानव समाज तथा मानव परिवार में शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ताकि लोग सामाजिक रूप से तथा पारिवारिक रूप से अपने जीवन को शुद्ध कर सकें और इस संसार के दुख समुद्र को पार कर सकें। अर्जुन का कहना है कि यदि युद्ध में समाज के वयोवृद्ध भीष्म, द्रोण आदि मारे जाएंगे तो सामाजिक जीवन को पवित्र करने वाले नियमों यानी जाति धर्म का लोप हो जाएगा। इसके साथ साथ पारिवारिक कल्याणकारी नियमों, कुल धर्म का भी मार्गदर्शक कोई नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में परिवार की स्त्रियां स्वच्छंद होने से दूषित हो जाएंगी और उनसे ऐसी संतानों का जन्म होगा जो समाज और परिवार के आध्यात्मिक कल्याण में कोई भी रुचि नहीं लेंगे। इसका अर्थ हुआ कि परिवार में ऐसे लोगों का जन्म होगा जो केवल पशुओं के ही समान जीवन व्यतीत करेंगे। हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, इस प्रकार पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक शांति स्थापित रही। तो अर्जुन की जो चिंता है वास्तव में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अर्जुन की इस बात से हमें पता चलता है कि मानव जीवन में धर्म की कितनी आवश्यकता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मितत पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समाना। अर्थात भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा भोग, ये चार आवश्यकताएं पशुओं तथा मनुष्यों में सामान्य है, परंतु मनुष्यों में धर्म की विशेषता है। धर्म से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आधुनिक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कसाई घर के समान है। सामान्य कसाई घरों में पशु जाते हैं तथा उनके जीवन की हत्या की जाती है, परंतु इन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय रूपी कसाई घरों में मनुष्य जीवन की हत्या की जाती है, अर्थात मनुष्यों को पशु बनाया जाता है। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की जितनी अधिक शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं उतनी अधिक पशु बन जाते हैं। यद्यपि ये पशु सामान्य पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये शिक्षित हैं। इन पशुओं को शास्त्रों में द्विपाद पशु कहा गया है। द्विपाद पशु का अर्थ है दो पैर वाले जानवर, अथवा कहा गया है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, अर्थात वे मनुष्य के रूप में पशु ही हैं जो विचरण कर रहे हैं। पशु चार पैरों से विचरण करते हैं, परंतु ये शिक्षित पशु दो पैरों से विचरण करते हैं। पशु के विचरण का उद्देश्य क्या है, ये खोजना कि भोजन कहाँ है, निद्रा कहाँ है, भोग कहाँ है तथा सुरक्षा कहाँ है। उसी प्रकार शिक्षित पशु भी दो पैरों से चलता हुआ या चार पहिए की कार में चलता हुआ इन्हीं आवश्यकताओं की खोज करता है। चार पहिए की कार में बैठ करके भी वो क्या कर रहा है, चार पैर वाले पशु की तरह ही उसकी चिंता है, क्या, खाना, सोना, सुरक्षा करना, भोग करना, यही। तो कार में बैठ करके कोई व्यक्ति चल रहा है तो पशु से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो मनोविचार है वो तो वही पशु के जैसे हैं, है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि धर्म से रहित होकर कोई भी शिक्षित व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म युक्त है परंतु शिक्षित नहीं है, वह अशिक्षित होते भी मनुष्य है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह मनुष्य बनने का प्रयास करे। शिक्षित पशु की तुलना में अशिक्षित मनुष्य बनना अच्छा है, वो शिक्षित हैं लेकिन पशु हैं, मनुष्य नहीं है। उससे अच्छा है अशिक्षित रहे लेकिन मनुष्य तो बने। शिक्षित पशु की तुलना में अशिक्षित मनुष्य बनना अच्छा है। उक्त श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में धर्म उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और निद्रा। जिस प्रकार हम भोजन तथा निद्रा की चिंता करते हैं उसी प्रकार हमें धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमें धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब हमारे मन में धर्म का विचार आए तो धर्म करना चाहिए, और जब हमारे मन में धर्म का विचार ना आए तो धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा है कहने वाले कहते हैं जब हमारा मूड होता है धर्म का तो हम करते हैं धर्म, जो कुछ करना है तो जब दिमाग में आती है बात तो हम करते हैं, है ना। ये घोर अज्ञान है। ऐसे लोग ये नहीं कहते कि हमें भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब हमारे मन में भोजन का विचार आए तो भोजन करना चाहिए, जब हमारे मन में भोजन का विचार ना आए तो भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वे जानते हैं कि भोजन ना करने से उनका शरीर निर्बल हो जाएगा, इसलिए भोजन करने की इच्छा ना होने पर भी वे भोजन करते हैं। उनको चिंता हो जाती है, अगर भोजन की इच्छा नहीं होती तो उनको चिंता हो जाती है, हैं? और डॉक्टर के पास जाते हैं कि खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन धर्म करने की इच्छा नहीं हो रही है तो मत करो, जब धर्म की इच्छा हो तो करो धर्म। लेकिन भोजन के लिए ऐसा नहीं कहते कि भोजन की इच्छा नहीं तो ना खाओ भोजन, दस दिन तक भोजन की इच्छा नहीं होती है दस दिन ना खाओ भोजन, ऐसा नहीं कहेंगे, फिर चिंता होती है। वे जानते हैं कि भोजन ना करने से उनका शरीर निर्बल हो जाएगा, इसलिए भोजन करने की इच्छा ना होने पर भी वे भोजन करते हैं। अतः ये तर्क उचित नहीं है कि जब हमारी इच्छा हो तभी धर्म का आचरण करना चाहिए, गलत। इस श्लोक में अर्जुन सामाजिक धर्म तथा पारिवारिक धर्म की रक्षा करने की चिंता कर रहे हैं, ये तो सर्वथा उचित है, परंतु इससे भी अधिक चिंता अपने व्यक्तिगत धर्म की करनी चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा चिंता अपने व्यक्तिगत धर्म की करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी अपने जीवन के प्रति भी है, समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो बाद में है, इस सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति है और उस भगवान के प्रति है जिसने आपको मनुष्य का जीवन दिया है।